الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے لیے ایسے موقع پر حاضری دینا یہ میری ایک سعادت ہے، عام طور پر طلبہ میں، لڑکوں میں، مردوں میں علم حاصل کرنے کے ذرائع وسائل زیادہ موجود ہیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پر خواتین میں، عورتوں میں، بچیوں میں علم کے اسباب اور صحیح طور پر علم حاصل کرنے کی جگہیں اور ایسے پڑھانے والے جنہوں نے صحیح طریقے سے علم حاصل کیا، ایسی جگہیں مردوں کے مقابلے میں تو بہرحال کم ہیں. اسے واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ مجھے ان طالبات کی، چاہے وہ کم عمر ہوں یا زیادہ عمر کی ہوں، بہرحال طالبات تو طالبات ہی ہوتی ہیں جو علم حاصل کرنے والیاں ہوتی ہیں. شریعت میں اس کی جو اہمیت ہے وہ تو ہے، قرآن و حدیث میں اس کی جو اہمیت ہے وہ ہے، ظاہر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. اور اس کے فضائل اگر ہم شمار کرنے جائیں تو واقعتاً آج کی مجلس میں صرف علم حاصل کرنے کے مکمل فضائل بھی بیان نہیں ہو سکتے. یعنی وہ بھی، میں صرف ان فضیلتوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی موجود ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں تو ذخیرہ بھرا ہے اور اس کی تشریحات میں اگر ہم جائیں تو بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کو کیا کچھ دے رکھا ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں کو فی الحال ہم ایک طرف رکھتے ہیں. جو اصل چیز جو ہم سے متعلق ابھی زیادہ ضروری ہے، ان باتوں کی طرف ہم جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ عورتوں میں اور طالبات میں تعلیم کا اور تربیت کا سلسلہ، یہ بہت عظیم خدمت ہے. جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں پڑھانے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، قوت دے اور ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے امت کو مستفید کرے. اور جو ان کے پاس پڑھنے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے. ظاہر ہے یہی دین ہے، عورتوں کے ذریعے سے یہ دین جتنا مستحکم اور مضبوط ہوا ہے اس کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مردوں کا، مجاہدوں کا ذکر، مردوں کی قربانیوں کا ذکر، مردوں نے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اس کا ذکر تو عام ملتا ہے، کتابیں اس پہ بھری پڑی ہیں، سوانح ہیں، بزرگوں کے حالات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس طرح عورتیں مستور رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، تو ان کے حالات بھی مستور رہتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. حالانکہ بڑی بڑی قربانیاں جن حضرات نے پیش کی ہیں، ان کے پیچھے عورتوں کی قربانیوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم وہاں سے شروع کریں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اور اس کے ذریعے سے جہاں جہاں دنیا بھر میں جو دین پھیلا ہے ہم وہاں سے چلیں، یا پھر ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں حضرت مولانا حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے ہم آگے بڑھیں اور ان کے گھر کے دیکھیں کہ ان کے گھر والوں نے کیا قربانیاں پیش کی، یا پھر ہم اس سے اور پہلے چلے جائیں کہ ہم دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے، ازواج مطہرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے گھر والوں نے کیا قربانیاں پیش کی. बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत थे, उनके घर की औरतों ने क्या कुर्बानियां पेश की, जाहिर है कि एक पूरी तारीख है, लेकिन आम तौर पर बहुत ज्यादा उनका तस्करा नुमाया नहीं नजर आता और लोगों की जुबानों पर नहीं होता। वजह बस ऐसा ही समझ लिया जाए कि उनका तस्करा कम होता है, औरतें मस्तूर होती हैं, उनके तस्करे भी मस्तूर रखे जाते हैं। वरना अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के अंदर दीन के लिए कुर्बानी पेश करने का जज्बा रखा है और उनके यानी उनके जरिए से दीन को कायम रखा है, दीन की हिफाजत की है, उसके साथ साथ औरतें भी इस चीज में कोई कम नहीं है, बल्कि यह तो मशहूर ही है और औरतों के लिहाज से तो ये बात बिल्कुल वाज़ह है और बहुत मारूफ होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हिस्सा होता है। बात सही है नहीं है, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि घर में अगर औरत ने दीन पढ़ा है तो बच्चों की तरबियत और पहली जो तालीम है वो माँ से शुरू होती है। माँ के अंदर अगर दीनदारी और समझदारी है तो बच्चों में, खानदान में और हर जगह वो दीनदारी जाएगी। और अगर बाप में दीनदारी है, माँ में नहीं है, औरत ने दीन हासिल किया नहीं, सही दीन को समझा नहीं, तो जाहिर है कि आगे उनकी नस्लों में और आगे जो सिलसिला चलता है वहां पर, बल्कि पहली मरतबा बहुत सी मरतबा तो जो पहली नस्ल है उसी में बेदीनी आ जाती है, कभी उसमें नहीं तो आगे जाकर बेदीनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला मैं यानी वाकई हकीकत यह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है जिससे मैं अपने दिली जज्बात का इजहार कर सकूं कि औरतों में जो तालीम का सिलसिला है और दीनी तालीम और तरबियत के लिहाज से जो कोशिशें हो रही हैं उसकी क्या कदर व कीमत है अल्लाह ताला ही जानता है, और उसके क्या नतायज हैं जिन्होंने तारीख को देखा है वो समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या नतायज हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह यहाँ पर जो खिदमतें हो रही हैं इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नतायज अभी भी जाहिर हो रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छे नतायज जाहिर होंगे और उम्मत को यानी एक बड़ा नफा इंशाअल्लाह हासिल होगा। इल्म के साथ साथ ये भी जरूरी है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह छोट कम उम्र की बच्चियां भी हैं वो भी पढ़ती हैं, जो बाकायदा दरस निज़ामी की जो किताबें हैं वो, और जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं वो भी तालीम हासिल करती हैं। बड़ा एक अच्छा जज्बा है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैह का कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल फरमाया है कि दो तरह के लोग इल्म हासिल नहीं कर सकते, एक मुस्तही शर्माने वाला और दूसरा मुतकब्बिर, यानी किसी में बड़ाई है, नहीं नहीं मैं फलाने के पास जाकर क्यों पढ़ूं, वो मुझसे छोटी है मैं क्यों जाकर उससे पढ़ूं, मैं इस इल्म क्यों हासिल करूं, तो एक मुतकब्बिर होता है। एक होता है हया, शर्म आती है, नहीं नहीं फलाने के पास जाकर पढ़ने में शर्म आती है, तकब्बुर नहीं उसको इंसान कह सकता है लेकिन हया कह सकता है। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल खास तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल फरमाया है कि देखो इमाम मुजाहिद जो बड़े अपने वक्त के फकीह और मुहद्दिस थे वो फरमाते हैं, मुफस्सिर थे, वो फरमाते हैं कि देखो कि जो शख्स शर्म या जिस शख्स में किबर, ये दो चीजें होंगी, वह इल्म हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में एक और बात फरमाई है हदीस के तौर पर, फरमाते हैं इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म तो वही मुतबर है जो किसी से सीख कर हासिल किया जाए। इल्म के लिए इंसान को सीखना पड़ता है, किसी के पास जाना पड़ता है, और इसी को किसी ने कहा कि अल इल्म इज्जुन ला दुल्ल फी, इल्म एक इज्जत की चीज है, उसमें कोई जिल्लत नहीं है, लेकिन यानी इल्म हमेशा इंसान को आखिर में जाकर बाइज्जत बनाता है। अल इल्म इज्जुन ला दुल्ल फी लेकिन युतलबु बिज़ुल्लिन ला इज्ज फी, उसको हासिल कर किया जाता है ऐसी मातहती इख्तियार करके, ऐसी अपने आप को कम दर्जे का साबित करके कि किसी के सामने उनके शागिर्द बनना पड़ता है, किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के सामने अदब करना पड़ता है, तो जिल्लत के साथ हासिल किया जाता है, उस वक्त इज्जत नहीं। इल्म हासिल करते वक्त जितना इंसान अदब का ख्याल रखता है, अपने जिन्होंने सिखाया है उनका अदब करता है, उनका एहतराम करता है, उनकी बात मानता है, इतना ही पढ़ने वालों के इल्म में बरकत ज्यादा ज्यादा होती है। ये तो बाकी तजुर्बे की चीज है और यानी मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो किताबों में बात लिखी हुई है और मैंने खुद अपने बारे में यही देखा कि पढ़ाई के जमाने में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरों से ज्यादा पढ़ने में या किसी चीज में मैं आगे रहा हूँ। यानी इस्तेदाद के लिहाज से हमारे यानी उस वक्त बड़े अच्छे अच्छे तलबा हुआ करते थे, वो भी माशाल्लाह दीन की बड़ी बड़ी खिदमात कर रहे हैं और बहुत बड़ी खिदमात कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की दुआएं, उनकी अदब और उनकी खिदमत की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे भी ये मौका दिया कि दीन की खिदमत में लग जाऊं, वरना मुझसे बहुत से काबिल लोग थे जो दीन की खिदमत नहीं कर सके और उनके लिए दूसरों दूसरे रास्ते उनको इख्तियार करने पड़े। तो बहरहाल ये है कि इल्म के साथ साथ ये जरूरी है कि जब इल्म हासिल किया जाए तो उसका पूरा एहतमाम हो कि जिससे हासिल किया जा रहा है, जो असबाब हैं इल्म के, उनका अदब किया जाए और उनके यानी जाहिर के एतबार से भी अदब हो और दिल में भी उनका अदब और एहतराम हो। इल्म इज्जुन ला जुल्ल फी युतलब बिजुल्ल ला इज्ज फी, आखिर में जाकर तो वह इज्जत तक पहुंचा ही देता है। इसी तरह किसी ने कहा है, आदमी में बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें हैं इस सिलसिले में, किसी ने कहा इल्म ला युतीका बादहु हत्ता तुअतीहु कुल्लका, इल्म तुम्हें अपना बाज हिस्सा नहीं देगा यहाँ तक कि तुम पूरे के पूरे अपने आप को इल्म के हवाले कर दो। कुछ वक्त के लिए अपने आप को इसी में लगाना पड़ता है कि मुझे फलानी चीज सीखनी है, फलाना इल्म हासिल करना है, बाकी चीजों से निकल कर इंसान को इल्म हासिल करना पड़ता है। जाहिर है कि उसके लिए तो जो बचपन का जमाना होता है, जब घरेलू जिम्मेदारियां नहीं होती, उस वक्त का जमाना ही सबसे अच्छा है। बड़े होने के बाद इल्म हासिल करने में जरूरी है और उससे भी फायदा है, लेकिन उसमें इल्म के एतबार से वो पुख्तगी नहीं हासिल होती जो बचपन में और जिम्मेदारियों से फारिग होने के जमाने में हासिल होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अच्छे अशआर हैं, मैं इन चीजों की ज्यादा तफसीलात में तो नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन एक बहस एक सिलसिला शुरू हुआ है तो चंद बातें इस सिलसिले में बता दूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से ने बड़े अच्छे अशआर इल्म और उलमा के बारे में बयान फरमाए, उनका कुछ हिस्सा मैं बताता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मन फातहुल इल्म वक्त शबाबी ही फकब्बिर अलैहि अरबअन लिवफाती ही, बड़ा अच्छे अंदाज से उसको पेश फरमाया। फरमाते हैं, मन फातहुल इल्म वक्त शबाबी ही, जवानी के जमाने में जो इल्म हासिल नहीं कर सका और बड़ा हो गया, अब घरेलू जिम्मेदारियां, जहन भी जाहिर है कि बुढ़ापे में बड़ी उम्र में जाने के बाद फिर वो चीज वो पुख्तगी नहीं रहती। बचपन में तो इंसान याद करता है, तो बचपन और जवानी का जमाना वो याद करने के लिहाज से बेहतरीन जमाना होता है। तो फरमाते हैं, अनफातहुल इल्म वक्त शबाबी ही फकब्बिर अलैहि अरबअन लिवफाती ही, जो शख्स जवानी के जमाने में इल्म हासिल न कर सका तो फिर उसको इल्म की नमाज जनाजा पढ़ लेनी चाहिए, तकबीरात, चार तकबीरात पढ़ ले कि अब उसको इल्म में पुख्तगी नहीं मिलने वाली। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने लिहाज से फरमाया कि इल्म में पुख्तगी अब नहीं होगी, हाँ जरूरी मालूमात मिल जाएंगी, जरूरी मालूमात मिल जाएंगी, इंसान अपने आप को बदल सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इल्म का बड़ा हिस्सा जाहिर है कि बड़ी उम्र में जाने के बाद ही हासिल किया था, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने लिहाज से फरमाते हैं कि असल इल्म हासिल करने का जमाना वो शुरू का दौर होता है, जब इंसान के कुवा मजबूत होते हैं, कुव्वत मुकम्मल होती है, जवानी है और बचपन का आखिरी दौर है, जवानी का जमाना है, उस वक्त इंसान मेहनत कर लेता है, सीख लेता है। आगे फरमाते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वमन लम यज़ुक मुर्र तअल्लुम सा'अतन तजर्रअ ज़ुल्लल जहल तूल हयातिही, जो शख्स थोड़ा वक्त निकाल कर इल्म हासिल करने की मुशक्कत नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो जैसे बहुत से होते हैं कहते नहीं नहीं हम क्यों सीखी से जाकर सीखें, किताबें हैं हम खुद किताबों में से पढ़ लेंगे। किताबों में से पढ़ना और किसी के सामने वही किताब पढ़ना बहुत बड़ा फर्क है। अपने तौर से मुताला करना और किसी के सामने जाकर उस किताब को पढ़ना, ये बहुत बड़ा फर्क है। किसी से पढ़ने में ये सिलसिला इल्म का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। इल्म सिर्फ जाहिरी मालूमात का नाम नहीं है, वो तो हमें बहुत सी जगहों पर इंटरनेट वगैरह में भी मिल जाएगा। इल्म मालूमात का नाम नहीं, इल्म तो दो चीजें हैं, एक जाहिरी मालूमात और एक उसके पीछे जो नूर है, वो नूर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा में, सहाबा से ताबईन में, और वो सिलसिला अब तक मुंतकिल होता चला रहा है, वो वास्ता वो बराह रास्त होता है, वो इंटरनेट वगैरह और सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। तो इसलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन लम यज़ुक मुर्र तअल्लुम सा'अतन, जो कुछ वक्त निकाल कर सीखना और इल्म हासिल करने की मुशक्कत नहीं बर्दाश्त कर सकता, तजर्रअ ज़ुल्लल जहल तूल हयातिही, तो जहालत की जिल्लत में हमेशा पूरी जिंदगी वो जहालत की जिल्लत उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वज़ातुल फ़तह वल्लाह बिल इल्म वत्तुका, इन नौजवान की हैसियत शख्सियत तो इल्म और तक्वा ही की बुनियाद पर होती है। इज़ा लम यकून अला एतिबार लिज़ाती ही, अगर इल्म और तक्वा किसी इंसान में नहीं है तो उसके वजूद का, उसकी ज़ात का क्या एतिबार है? कुछ भी एतिबार नहीं है। बहरहाल असल मकसद की तरफ आते हैं कि इल्म तो बहरहाल इल्म है, लेकिन इल्म नाफ़े वो होता है जिसके साथ अमल और दूसरों तक पहुंचाना, दो चीजें, अमल हो और दूसरों तक पहुंचाना हो, ये दो चीजें हैं। आमतौर पर तो हम ये समझते हैं कि इल्म नाफ़े वो होता है कि इंसान उस पर अमल करे, ठीक है, लेकिन इल्म का कामिल नफा ये है कि इंसान खुद सीखे, सही जरिए से सीखे और सीख कर खुद अमल करे, अमल करके दूसरों तक पहुंचाए। तो खुद अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना ये दोनों चीजें हैं। ये दो चीजें अगर हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस इल्म में नफा है। नफा किस एतबार से? इसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि नफा की दो किस्में हैं, नफा की दो किस्में हैं। इल्म के नाफे होने के जो मैंने दो सूरतें बताई, नफा की दो किस्में हैं। एक किस्म तो ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे आमाल कर ले जो उसको आखिरत में काम आने वाले हैं। ये वो आमाल होते हैं जो उसकी मौत से मुनक़ते हो जाते हैं। इदा मात इब्नु आदम इन्क़ता अमलुहु, इंसान का जब इंतकाल होता है तो आमाल का सिलसिला अब खत्म हो गया, अब सवाब मिलने का सिलसिला खत्म हो गया, इसलिए कि मर गया, कब्र में चला गया। तो इसलिए कब्र में जाने के बाद भी बाज आमाल ऐसे होते हैं कि उसका सवाब कब्र में जाने के बाद भी मिलता रहता है, तो ऐसे आमाल भी इंसान को करने जरूरी हैं कि कब्र में जाने के बाद भी वो सिलसिला जारी रहे। इसलिए मैंने कहा कि दो तरह के नफा के दो किस्में हैं, एक तो वो है जो इंसान खुद अमल कर लेता है और बस, एक ये है कि इंसान ने खुद सीखा, जैसे औरतें सीखती हैं, लड़कियां सीखती हैं, अपने घरों में जाकर वो अपने बच्चों की उस तरह तरबियत करे, छोटे भाई बहनों की उस तरह तरबियत करे, जो सीखा है उस पर अमल का जज्बा उनमें पैदा हो, घर में दीनी माहौल आ जाए, जो बुरी चीजें हैं उनको निकालें, खुद अमल आया और खुद अमल के साथ साथ माहौल बना लिया, घर का माहौल बनाया, आसपास के माहौल बनाया, दूसरों को सिखाया। तो पहली चीज जो इंसान ने खुद ने अमल किया वो तो मौत से खत्म हो गया, लेकिन दूसरी चीज के अपने औलाद को, अपने भाई बहनों को, अपने दूसरे जानने वालों को जो सिखाया, उनके सिखाने से वो सिलसिला आगे चलता रहेगा, इंसान कब्र में पहुंच जाएगा, इसको सवाब मिलता रहेगा। कुरान करीम ने हमें ये तालीम दी है कि देखो दोनों तरह के अमल करो, एक अमल नहीं, दोनों तरह के अमल करो। सूरह अल असर हमारी आइंदा जो तफसीर होने वाली है इंशाअल्लाह, उसमें अल्हाकुम अत्तकासुर और सूरह वल असर ही का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह, उसमें अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, देखो वक्त बड़ा कीमती है, वक्त की कदर कर लो, वल असर वक्त कीमती चीज है, उसकी कदर करो, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान नुकसान में पड़ा हुआ है, नुकसान में कौन नहीं है, इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए नेक आमाल करते रहे, एक किस्म का काम कर लिया, खुद अपना जात के लिए ईमान, अपनी जात के लिए ईमान और अमल सालेह, और दूसरा तवासौ बिल हक व तवासौ बिल सबर। तफसीर में मैं नहीं जाता इसलिए कि वो फिर बात लंबी हो जाएगी, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के अमल करने का हुक्म फरमाया है, एक आमनु व अमिलुस सालिहात, जो इंसान जिंदगी में करता है मौत से उसका सिलसिला खत्म हो जाता है, और दूसरा तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र, दूसरों को भी इंसान नेकी की दावत देता रहे, नेकियों की तरफ बुलाता रहे और नेकी का माहौल बनाए, तो मरने के बाद जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे तो इंसान को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये दूसरे किस्म का अमल हो गया, और यही है जो कुरान ने हम मुसलमानों से मुतालबा किया है, कुरान के मानने वालों से कुरान ने मुतालबा किया है कि देखो ये दोनों काम करो। ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज बता दी कि देखो ये भी करो ये भी करो। जिंदगी मुख्तसर है, वक्त थोड़ा सा है, वक्त की कदर कर लो, वक्त की कदर ये है कि दो तरह के अमल जमा कर लो वरना तुम नुकसान में पड़ोगे। इससे कैसे भी इंसान अगर 20 साल 15 साल की उम्र के बाद अगर नेक अमल का सिलसिला शुरू करे, जिंदगी का बहुत सा हिस्सा तो इंसान का लहू और बेकार चीजों में गुजर जाता है, उसके बाद फिर बहुत सा वक्त खाने में, बहुत सी चीजें, गुनाहों का कुछ हिस्सा गुनाहों में गुजरता है, गुनाहों में नहीं तो चलो गफलतों में और बेकार चीजों में गुजर जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि देखो तुम्हारी जिंदगी में जितना तुम अमल करते हो वो तो बहुत मुख्तसर है। गुज़िश्ता उम्मतों की उम्र लंबी हुई थी, तुम्हारी उम्र कम है। तो अगर से तुम लोगों को फजीलत ज्यादा मिलेगी, इस उम्मत को फजीलत ज्यादा मिलेगी, लेकिन फिर भी ऐसा करो दो तरह के अमल कर लो। तुम तो जिंदगी में चलो 60 साल की, 70 साल, 80 साल, 90, 100 साल की उम्र पाली, लेकिन जाना तो है। तो ये 100 साल की जिंदगी में कितना वक्त इबादत में गुजरा और कितना वक्त लगो और बेकार चीजों में गुजरा, यह हर शख्स अपने बारे में सोच सकता है कि कितना वक्त जाया होता है इंसान का। तो इसलिए ये जिंदगी काफी नहीं है अखीर के बुलंद दरजात और बड़े बड़े दरजात हासिल करने के लिए। ठीक है, निजात के लिए काफी है और दरजात हासिल करने के लिए भी, लेकिन अल्लाह ताला इस उम्मत को जो बहुत ऊंचा मकाम देना चाहते हैं उस बुलंद से बुलंद मकाम तक पहुंचने के लिए तुम मजीद ये भी कर लो, अल्लाह ताला से कह रहे हैं ये भी कर लो कि ऐसे आमाल करो कि कब्र में जाने के बाद सवाब मिलता रहे। और वो कैसे मिलता रहेगा? ऐसे अफराद इंसान तैयार कर दे जो उस पर अमल करते रहे, हमने जो सिखाया उसके मुताबिक अमल करें। और जब वो अमल होता रहता है, चाहे इंसान ने नियत की थी या नहीं की थी, इंसान ने तो किसी को सिखा दिया, बस अब उसने सीख लिया, वो आगे अमल करता है, अपनी औलाद को सिखाता है, किसी को सिखाता है, ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक हमारी सिखाई हुई चीज किसी में बाकी रहेगी, कब्र में जाने के बाद भी हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हमारे साथ कि हमें ये भी मौका दिया कि कब्र में जाने से सवाब मिलने का सिलसिला बाकी रहे। इसीलिए वक्त की कदर किस तरह की जाए और वक्त को ज्यादा से ज्यादा कीमती किस तरह बनाया जाए, उसके लिए भी इंसान को बहुत समझदारी की जरूरत होती है। एक होता है कि इंसान ठीक है गलत कामों से बच गया, एक होता है इंसान नेक काम कर रहा है, लेकिन नेकियों के भी दर्जात होते हैं। इसकी एक मिसाल से शायद बात साबित वाजह हो जाए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें एक शख्स वो होगा जिसको 1 घंटे के $50 मिल रहे हैं, उसी फैक्ट्री में काम करने वालों में कोई शख्स वो भी होगा जिसको घंटे के $10 मिल रहे हैं, किसी को 100 भी मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब जाहिर है कि वहां पर हर एक का अलग अलग दर्जा है, उसके लिहाज से उसको घंटे के लिहाज से पैसे मिल रहे हैं। इसी तरह इंसान ठीक है गलत काम में वक्त नहीं गुजारता, नेक कामों में ही वक्त गुजारता है, लेकिन नेक कामों की भी अलग अलग किस्में हैं कि कौन से दर्जे का नेक काम कर रहा है। तो उसको भी इंसान देखे कि नेकियों में इंसान वो चीजें इख्तियार करे जिसमें फजीलत ज्यादा है, जिसका दर्जा ज्यादा है, और उसके लिए अहम तरीन चीज जो है वो है कि इंसान इल्म, सुन्नतों का इल्म हासिल करे, सुन्नतें सीखे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाए। सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा नफामंद बनाना चाहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इंसान सीखे और सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ये बेहतरीन चीज है। जैसे हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवेरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा फजर के बाद बैठी थी, कुछ पढ़ रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आमतौर पर आपका तो मामूल यही होता था कि फजर के बाद इशराक तक आप तशरीफ रखते थे और इशराक के बाद फिर कहीं तशरीफ ले जाते थे इशराक पढ़ने के बाद। तो उनको देखा बैठी थी पढ़ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पता नहीं कितने घंटे हुए होंगे, कुछ वक्त के बाद वहां से फिर दोबारा तशरीफ गुजर रहे थे, देखा कि वो अभी तक बैठी पढ़ रही है। यकीन तौर पर कहना मुश्किल है कि कितना वक्त गुजरा था, लेकिन तवील वक्त तक वो पढ़ती रही पढ़ती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी मर्तबा उनको देखा उस जगह पर बैठे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि तुम सुबह से जब मैंने तुम्हें देखा था उस वक्त से अभी तक उसी तरह बैठी पढ़ रही हो? उन्होंने कहा हाँ इसी तरह पढ़ रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हमारे हमारे सीखने के लिए हमारा सबक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास से जब मैं गया था उसके बाद मैंने ये दुआ पढ़ ली थी 3 मर्तबा, अरबा कलिमात सलात मिरार, ये 4 बातें थी जो मैंने 3 मर्तबा पढ़ ली थी। अगर मीजान अमल में वजन किया जाए तो मेरे इन कलिमात का वजन तुम्हारे उस पूरे अमल से ज्यादा हो जाएगा। अब ये चंद घंटों की इबादत, वल्लाहु आलम कितने घंटे थे इनकी, इतने घंटों की इबादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ, जो 1 मिनट भी नहीं लगती, आधे मिनट शायद लग जाए, आधे मिनट से कम में इंसान पढ़ ले, तो थोड़ी देर में ज्यादा कमाना उसके लिए इल्म जरूरी होता है। इल्म नहीं होगा तो इंसान बैठा रहेगा, अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। उसके बजाय अपनी जिंदगी को इंसान सुन्नतों के मुताबिक बनाए और सुन्नत के मुताबिक हर अमल करे, जितना ज्यादा हो सके इस मसनून दुआओं का अहतमाम करे। अमल में कुव्वत आती है, बरकत आती है और इंसान के वक्त की कीमत बढ़ जाती है। यह इल्म कोई, यह वक्त जो है वो बहुत अहम चीज है। किसी ने कहा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की बात फिर याद आ गई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने अपने बहुत से मशायख से ये बात सीखी है, उनकी मुख्तलिफ मशायख की खिदमत में गया, उन्होंने जो उनसे जो मैंने बात सीखी तकरीबन सबका मैंने इसी तरह तकरीबन करीब करीब सबका कौल करीब करीब पाया, और उन्होंने मुझसे ये मैंने मुझे ये बात सिखाई है कि देखो अल वक्तु सैफुन इक्ताहु व इल्ला कताअक, कि देखो वक्त एक तलवार है, वक्त तलवार की तरह है, या तो तुम उसको सही तरीके से गुजारो और उसको सही तरीके से काटो, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। कैसे काट देगा? इंसान जब बेकार बैठा होता है तो फजूल फजूल बातों का ख्याल आता है, अच्छा ये कर लें, ये कर लें, यहाँ पर ये कर लें, मुख्तलिफ फजूल चीजों में इंसान लगता है, और फजूल चीजें जब जहन में आती हैं तो इंसान आस्ते आस्ते फजूलियात से फिर इंसान गुनाहों में भी चला जाता है, अल्लाह को नाराज करने वाले असबाब भी अख्तियार कर लेता है। तो वक्त को सही इस्तेमाल करो, अगर इंसान मसरूफ रहता है तो फजूलियात का मौका ही नहीं मिलता। बहरहाल वक्त एक बड़ी कीमती चीज है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, फरमाया कि अल वक्त अनफसुमा अल वक्त अनफसुमा उनीत बिहिफ्ज़िही व उराहु असहल मा अलैका यदीउ। वक्त सबसे बेहतरीन चीज, सबसे उमदा चीज जिसकी हिफाजत की इंसान को जिम्मेदारी दी गई वो वक्त है, पैसे वगैरह नहीं, बेहतरीन चीज जिसकी हिफाजत की इंसान को जिम्मेदारी दी गई वो वक्त है। लेकिन वो उराहु असहल मा अलैका यदीउ, और सबसे आसानी से जाया होने वाला भी वक्त ही है। बहुत आसानी से इंसान बेकार इधर उधर की सोचों में पड़ा हुआ है, इधर उधर की बेकार चीजों में पड़ा हुआ है, वक्त चला गया, गुनाहों में नहीं और लघवियात में नहीं तो चलो इन चीजों में पड़ गया। बहरहाल ये मुस्तकिल, चूंकि सूरह असर की बात आई तो अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को का जिक्र फरमाया, उस लिहाज से वक्त की कुछ बातें बता दी। खैर ये इल्म, असल तो बात हमारे इल्म की चल रही थी कि इल्म हासिल करना ये एक बहुत अहम चीज है, और इसमें इल्म में ये वक्त को कभी यानी वक्त को ज्यादा से ज्यादा कीमती बनाने का तरीका यह है कि इल्म इंसान जो हासिल करे उसके मुताबिक अमल करता रहे। हमारे हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत मशहूर अपने वक्त के आलिम, लोग उनको उलमा में और मुहक्किकीन में शुमार करते हैं, लोग उनकी रूहानी बुलंदी और उनके अमली जो पुख्तगी थी बहुत से लोग उससे वाकिफ नहीं हैं। बहरहाल हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह उनके बड़े 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 अजीब अजीब वाकयात हैं। मिसाल के तौर पर एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि एक मरतबा वो नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, तो हौज के पास बैठे हैं, वजू करने के, वजू तो कर लिया इंसान, वजू कर लेता है, वजू करने के बाद 1 रकात चली गई, हौज के पास वजू करने में कितनी देर लगती है, वो बैठे हुए हैं, वो हौज के पास बैठे हैं, नमाज नहीं पढ़ी, जमात हो रही है, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज खत्म हो गई, इमाम साहब को बुलाया कि अबे तूने बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी, कशफ हो गया था। अल्लाह ताला ने उनको वो रूहानियत दी थी कि उनको कशफ हो गया कि नहीं ये जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं बगैर वजू के नमाज पढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों उसके पीछे नमाज पढ़ूं। बहरहाल फिर उसने वो माजरत की कि हाँ मैं भूल गया था, मुझे तो आपने बात बताया तो याद आया। अब उन्होंने जाकर फिर दोबारा ये अपना हदस दूर किया, वजू किया और फिर नमाज पढ़ाई, उसमें हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हुए। तो खैर हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत अहले इल्म में कोई मख्फी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जिनके तारुफ की जरूरत हो। वो तलबा से जब खिताब करते थे तो फरमाते थे जाहिलीन, उनका मकाम था, वो कहते थे जाहिलीन, देखो जब इल्म आता है किसी में तो वो तलाश करता है कि यहाँ अमल है या नहीं है, अगर इल्म के साथ अमल होता है तो वो इल्म महफूज रहता है, अगर अमल नहीं है तो वो इल्म वहां से चला जाता है। ये बात बहुत मुजर्रब है, बल्कि हम अगर यहाँ की स्कूलों के लिहाज से अंग्रेजी तालीम के लिहाज से भी देखें, वो कहते हैं कोई लफ्ज अगर नया याद करना है तो क्या तरीका है, उसको डिक्शनरी में देखो, देख कर उसको इस्तेमाल करने लग जाओ, चंद मरतबा इस्तेमाल करने से वो इंसान को याद हो जाता है, सिर्फ डिक्शनरी में याद करने से, लुगत की किताब में याद करने से लफ्ज याद नहीं रहता जब तक उसको इंसान इस्तेमाल ना करे। इसी तरह कोई सुन्नत हमने किताब में पढ़ी तो उस सुन्नत को पढ़ने के बाद अमल में लाते हैं तो वो याद हो जाती है, अमल में नहीं लाते तो भूल जाते हैं। अपनी ये बात बता दूं, कोई इंसान को अपने जो तजुर्बात होते हैं वो बड़े याद रहते हैं। मुझे याद है मैंने हदीस वगैरह तो पढ़ी थी, मैं एक मरतबा देवबंद गया, वहां पर जिस हुजरे में हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए थे, तो वहां पर हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका भी इंतकाल हो गया, जो अपने वक्त के जाहिर है बहुत बड़े मुहदिस, और अभी करीब में उनका इंतकाल हुआ। हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं तशरीफ लाए थे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए। रात उसी हुजरे में उनका क्याम था जहां हमारा क्याम था, रात के जो मामूलात थे वो अपनी जगह। बहरहाल सुबह के वक्त मैंने देखा वो हमारे पास ही थे, वहीं कमरे में थे, चारपाई पर बैठे और दुआ पढ़ रहे थे, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह। मैंने उनको जब दुआ पढ़ते हुए सुना तो उस वक्त से मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त से मेरे जहन पर उसका एक खास नक्श बैठा और एक दिल पर चोट लगी कि ये किताबें ये हदीस तो हमने भी पढ़ी, कि हम भी तो पढ़ते रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, लेकिन अब तक मुझे तो कभी पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। बहरहाल उस वक्त से मेरे जहन में एक बात आई कि नहीं, ये दुआएं सुबह की पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी। उसके बाद फिर दोबारा देखी कि सुबह के वक्त की दुआएं कौन सी होती हैं, एक एक करके उन दुआओं को याद किया और कुछ दुआएं शामिल कर ली कि अच्छा सुबह के वक्त ये दुआएं पढ़नी है, शाम के वक्त ये दुआएं पढ़नी है। इंसान जब किसी को देखता है तो वो चीज़ जहन में आती है और याद रहती है। वही तनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि वाली बात में बता रहा था कि हमने भी हदीसें पढ़ी थी, हमने भी ये दुआएं पढ़ी थी, मिश्कात में भी पढ़ी और जाकर फिर दौरे में भी पढ़ी, लेकिन अमल उस वक्त शुरू हुआ जब किसी को बाकायदा देखा और याद उस वक्त रही वो दुआएं जब अमल में आ गई, वरना अमल से पहले वो दुआएं याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि वाली बात बड़ी अच्छी है कि देखो इल्म जब किसी में आता है तो वो अमल को तलाश करता है, अगर अमल वहां पर होता है तो इल्म बाकी रहता है, अमल नहीं होता तो इल्म वहां से रुखसत हो जाता है। हाँ एक बात यहाँ जहन में रहे कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनका हाफजा अल्लाह ताला ने उनको बड़ा कवी हाफजा दिया होता है, तो वो लोग इल्म और मालूमात में फर्क नहीं कर सकते, हाफजा तेज है समझदारी पूरी नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो याद है, लेकिन तौफीक का न होना गोया के इल्म में वो नाफियत, इल्म में वो नूरानियत नहीं आई। हाफजा तो बड़ा अच्छा है, याद है, लेकिन अमल की तौफीक नहीं होती। तो इल्म के साथ अमल ये बहुत जरूरी है, वरना इल्म जो है वो रुखसत हो जाता है, इल्म की नूरानियत तो कम से कम चली जाती है, अगर हाफजे में याद भी रह गया तो इल्म की नूरानियत तो खत्म हो जाती है, उसका नाफे होना खत्म हो जाता है। जाहिर है कि ऐसा इल्म इंसान को क्या काम देगा, इल्म तो वो काम दे जो इंसान जिस पर अमल करे और उसकी नूरानियत बाकी हो और उस पर इंसान अमल भी करे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बहुत मशहूर है, और अद्दुरुल मुख्तार के शुरू में ये शामी जो है उसके शुरू में ये वाकया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बयान किया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आपको अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया, यानी जाहिर मकाम ऐसा था कि वो कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं, यानी इतनी मकबूलियत दुनिया में, आखिरत को जाहिर कोई नहीं जानता लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको जो मकाम दिया था इल्मी मकबूलियत और जो लोगों का उनकी तरफ रुजू, तो उनसे पूछा गया कि बिमा बलख्त मा बलख्त, आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं वहां तक कैसे पहुंचे। तवाजो से काम नहीं लिया कि नहीं नहीं मेरा क्या मकाम, अल्लाह ताला ने जो दिया वो तो दिया है, मकबूलियत जाहिरी जो है वो तो है ही, आखिरत का भी अल्लाह ताला ने बड़ा ऊंचा मकाम उनको दिया। तो उन्होंने फरमाया कि दो काम, ये दोनों काम वो हैं जो हम सबको याद रखने हैं कि वो कौन से दो काम है जिससे इंसान बुलंदी पर पहुंचता है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया दो काम है, कैसे अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया, दो चीजें खास तौर से मैंने इख्तियार की, एक तो ये है कि कभी किसी को फायदा पहुंचाने का मौका आया तो मैंने कभी मा बखिल तो बिल इफादा, किसी को फायदा पहुंचाने में मैंने बुखल से काम नहीं लिया। किसी ने कहा यह मसला बता दो, ये नहीं कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं, नहीं, किसी ने मसला पूछा उसको बता दिया, किसी को कोई जरूरत पेश आ गई मैं जिस तरह मदद कर सकता था मैंने मदद कर दी, मा बखिल तो बिल इफादा, किसी को फायदा पहुंचाने में मैंने बुखल से काम नहीं लिया। और दूसरी चीज मा अंकर तो या मस्तनकफ तो आने इस्तेफादा, और मैंने किसी से फायदा हासिल करने में कभी आर महसूस नहीं की कि मैं बड़ा और ये छोटा, या मैं उसके पास जाऊंगा तो लोग मुझे उसको फलाने के शागिर समझने लग जाएंगे। मैंने इसमें कभी आर महसूस नहीं की, वही मैंने जिसको इमाम मुजाहिद का कौल बयान किया था कि मुस्तही शर्म हया नहीं, इल्म हासिल करने में हया ना हो बल्कि इंसान हासिल कर ले, जहां से इल्म हासिल हो सकता हो वहां से हासिल करें, और इल्म हासिल करने के बाद इस पर अमल करें तो अल्लाह ताला उस इल्म में बरकत भी देते हैं और वह इल्म नाफे बनता है, उसके मुताबिक फिर इंसान अपनी जिंदगी को बढ़ाता रहे और उसमें इजाफा करता रहे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के का मशहूर शेर है जो बहुत ही मशहूर है हमारे अहले इल्म में, शकवतु इला वकीअ सुअ हिफ्ज़ी फ़ौसानी इला तर्किल मआसी, मैंने इमाम अपने उस्ताद वकीअ से ये शिकायत की थी कि मुझे याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ, हाफ़ज़ा मेरा कमज़ोर है, तो फरमाया शेख फ़ौसानी इला तर्किल मआसी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने उनको ये ताकीद की कि देखो जो बुराइयां तुमसे अगर कभी होती हो तो उन बुराइयों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, औसानी रातर के मासी, वजह यह बताई कि इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाही ला युताल आसी, के इल्म अल्लाह की तरफ से एक नूर है और ये नूर किसी गुनहगार को नहीं मिलता। बहुत सी मरतबा इल्म पर अमल की तौफीक नहीं होती, क्या वजह है, शायद कोई गुनाह हो गया, इंसान तौबा इस्तगफार करे फिर कोशिश करें तो अल्लाह ताला जरूर तौफीक देते हैं। किसी चीज पर अमल की अगर तौफीक ना हो तो उसको अपना अपना जुर्म समझे इंसान, ये नहीं कि अच्छा नहीं शायद ये हो गया था, अपना जुर्म समझे और तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह ताला से मांगे तो इंशाल्लाह जरूर तौफीक मिलेगी। बाकी इल्म के बारे में अहादीस वगैरह, कुरान की आयत वगैरह जैसे मैंने बताया था उसमें तो बड़ी तफसील है, सिर्फ इतना बता दूं कि एक हदीस है जो बुखारी मुस्लिम, इमाम बुखारी ने भी नकल की है, इमाम मुस्लिम ने भी नकल की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन फक़हहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, किसी शख्स के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसको दीन की समझ देते हैं, दीन की समझ देते हैं। तो अगर किसी को अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी है, इल्म हासिल करने का जज्बा उसमें पैदा किया है, अमल में बेहतरी आ रही है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया में इंसान सही रास्ते पर लग जाए यही यही कामयाबी है, इसलिए कि हमें आखिरत के अहवाल तो नजर नहीं आ रहे, दुनिया में इंसान सही काम करने लग जाए और उस पर जमा रहे, सही रास्तों पर लगा रहे, यही इंसान की कामयाबी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शख्स दुनिया में ये सही रास्ते पर सही तरीके पर लग जाए और उस पर लगा रहे जमा रहे तो उम्मीद की जा सकती है, बहुत कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आखिरत में भी उसका मामला अच्छा ही होगा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो खैर तो वही होगी कि अल्लाह ताला उसको कुछ बेहतरी देना चाहते हैं, और अल्लाह ताला के यहाँ असल खैर तो आखिरत की है, तो अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ देते हैं, और दीन की अगर मुकम्मल समझ नहीं तो इंसान दीन हासिल करने और सीखने में इंसान कोशिश करता रहे। लेकिन ये इल्म और अमल दो चीजें हो गई, इल्म हो गया उसको महफूज रखने के लिए, अमल आ गया। इल्म और अमल के साथ एक हदीस है जिसमें हदीस की सनद के लिए एतबार से थोड़ा सा उस पर कलाम तो मिलता है लेकिन इसमें हमें बड़ा सबक है। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उत्लुब अल इल्म, इल्म हासिल करो, और वत्लुब माहुल माल इल्म सकीना वल हिल्म, और इल्म के साथ और दो चीजें सकीना और बुर्दबारी, सुकून वकार संजीदगी, जो एक इल्म और आलिम के शान के मुनासिब हो वो भी सीखना जरूरी है। तो इल्म और अमल और इल्म के लिए जो वकार और संजीदगी चाहिए वो भी इंसान हासिल करे। आगे फरमाया वलीनु लिमन तुअल्लिमून, और जिनको तुम सिखाते हो उनके साथ नरमी का, खैरखाही का, आसानी का मामला करो, और जिनसे तुम इल्म हासिल करते हो उनके साथ भी अच्छाई का मामला करो। वलिमन तअल्लमतुम मिनहुम वला तकूनु मिन जबाबरतिल उलमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई कि इल्म हासिल करो, इल्म के साथ एक तो होता है ना कि इंसान ने इल्म हासिल कर लिया लेकिन उसको दूसरों तक पहुंचाने का तरीका नहीं आया, डांट कर पहुंचा रहे नहीं, علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا نرمی کے ساتھ، بہت سکون اور وقار کے ساتھ، حلم کے ساتھ، صبر کر کے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور سکون اور وقار کو دیکھ کر ہی تو سب کچھ سیکھا تھا۔ عمل، علم جو ہے وہ اصل دوسروں کا عمل دیکھ کر آتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ دوسروں کا عمل انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے علم حاصل۔ تو علم کے ساتھ ساتھ انسان میں یہ بڑائی نہیں آنی چاہیے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کبر کے اسباب بیان فرمائے تو کبر کے اسباب میں پہلا سبب یہ بیان فرمایا کہ علم۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس میں بڑائی آتی ہے، تکبر آتا ہے، تو انسان کو علم کے ساتھ ساتھ حلم اور تواضع اور صبر، برداشت، یہ چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان علم حاصل کرے اور ساتھ ساتھ میں بد اخلاقی میں بھی بڑھتا رہے، جیسے کہ کبر آئے گا تو بد اخلاقی بڑھتی رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ باقی مجھے معلوم نہیں کہ کتنا وقت آگے کیا کیا باتیں کرنی ہیں اور کتنا وقت ہے۔ بہرحال جو ضروری باتیں تھیں اصل تو وہی تھیں، ایک تو یہ ہے کہ مجھے بڑی قدر ہے الحمدللہ اس طرح کے اداروں کی، اس طرح کی جگہوں کی، چاہے یعنی ہم بڑے بڑے اداروں کی تعداد کے لحاظ سے ہمیں تعداد کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مضبوط اور دین پر عمل کرنے والے ہوں، عورتوں میں دینی ماحول عام ہو، عورتوں میں دینی ماحول ہوگا تو گھروں میں جائے گا، گھروں سے ان کی نسلوں میں جائے گا اور پورے گھر دینی لحاظ سے آباد ہوں گے۔ بڑی یہ خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو قبول کرے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے اس کو، یعنی جنہوں نے جس طریقے سے حصہ لیا، جتنا حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے شان شان بدلا عطا فرمائے۔ اس علم میں حقیقی معنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی وراثت چھوڑی، انما ورث العلم، علم کی جو وراثت چھوڑی، اللہ تعالیٰ اس صحیح جو وراثت، علم نبوت کی جو وراثت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پورا پورا ان سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو اس میں شامل کریں، اور وارثان انبیاء میں اللہ تعالیٰ ان کا شمار کریں، سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو، اور آگے جو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سب میں، علم میں، عمل میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور باقی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بڑا قبول کرے گا، نافع کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے سلسلے اور قائم ہونے چاہیے۔ بس یہ ہے کہ اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزوں سے بچنا وہ بھی ضروری ہے۔ یہ آخری بات میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بری چیزوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ پورے قرآن کریم نے ہم نے پڑھا، قرآن کریم ہے، اس میں مختلف احکام بیان کیے گئے۔ سب سے آخری صورتیں کون سی ہیں؟ معوذتیں۔ تعوذ کیا ہے؟ پناہ، حفاظت۔ تو یہ بتایا کہ دیکھو جو کر رہے ہو اس کو بچانا بھی ضروری ہے، حفاظت بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ علم اور دین کا سلسلہ جو ہے، جو اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کچھ لوگ یہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے، اگر کوئی دوسرے گھر میں اگر کوئی اور سلسلہ قائم ہوتا ہے تب بھی اچھا ہے، وہاں بھی لوگ سیکھیں۔ تقابل کی کوئی صورت نہ ہو کہ اچھا یہاں آتے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے، نہیں، ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، لوگوں میں، دینداروں میں جوڑ کی بہت ضرورت ہے، اس امت میں افتراق بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، ہر ہر جماعت میں اب انتشار اور افتراق ہو رہا ہے، جوڑ کی ضرورت ہے۔ کہیں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مخالفت نہ کی جائے، بلکہ ان کا اگر ہو سکے تو ساتھ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ جگہوں پر یہ دینی کام چلتے رہیں گے، انشاءاللہ خیر زیادہ ہوگی، عموم زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اور نفع زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ دین کے کام کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ انسان اچھا کام کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں اچھے کام کے ساتھ غلط کاموں سے بچنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کامیابی کا حصہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، کسی کی مخالفت نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کی برائی نہ ہو، اپنا کام انسان کرتا رہے، اور اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہ ہو، جوڑ کی کوشش ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما کر اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو عام فرمائے، یہ سلسلے کو کامیاب بھی فرمائے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سلسلے عام فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله العالمين هم سب کی مغفرت فرما إله العالمين ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے الہ العالمین یا اللہ جو اس ماحول میں یہاں کے ماحول میں جو علم کا ماحول بنا یا اللہ اس ظلمت میں جو یہ نورانی ماحول تو نے پیدا فرمایا یا اللہ یہاں کی جہالت کی ظلمتیں اور یا اللہ برے اعمال کی ظلمتوں میں جو یا اللہ یہ علم کی نورانیت اور عمل کی نورانیت جو یہاں تو نے عطا فرمائی ہے الہ العالمین اس سلسلے کو تو قبول فرما لے الہ العالمین اس میں خوب برکت عطا فرما دے الہ العالمین یا اللہ یا اللہ یہ سلسلہ قائم دائم فرما اور اس میں خوب برکت عطا فرما الہ العالمین یا اللہ اور اس سلسلہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا اللہ یا اللہ علم میں عمل میں ہر چیز میں برکت اور قوت عطا فرما الہ العالمین یا اللہ یا اللہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تیری رضا کے لیے ہے یا اللہ تو اپنی رضا کے فیصلے فرما دے یا اللہ تمام جمع ہونے والوں کے ساتھ یا اللہ تو رضا کے فیصلے فرما دے، یا اللہ جو بھی بچیاں سیکھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں، جو یا اللہ بڑی عمر کی خواتین عورتیں سیکھ رہی ہیں، یا اللہ جو علم حاصل کر رہی ہیں، یا اللہ جو سکھا رہی ہیں، الہ العالمین تو تمام کو یا اللہ اپنے شائن شان بدلہ عطا فرما کر یا اللہ اپنی رضا ان کو نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے عمل میں ان کے علم میں برکت عطا فرما دے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، الہ العالمین ان کے گھروں میں دینی ماحول کو عام فرما دے، الہ العالمین یا اللہ ازواج مطہرات، یا اللہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یا اللہ جو خوش نصیب جماعت یا اللہ صحابہ صحابیات کی ہوگی، محدثین اور فقہا کی ہوگی، یا اللہ تو ہمیں بھی یا اللہ اس جماعت میں شامل فرما لے، یا اللہ آخرت میں ہمیں اس جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، الہ العالمین یا اللہ یہ ہماری طرف سے کوشش ہے، یا اللہ یہ کوشش ہے، اس میں یا اللہ برکت ڈالنے والا کامیابی ڈالنے والا تو ہے، الہ العالمین یہاں کی تعلیم میں، یہاں کے یا اللہ جو ہفتوں کے ہفتے کے لحاظ سے ہفتہ وار جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی، یا اللہ جو اصلاحی تربیت کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی، جو مستقل یا اللہ تعلیم کا نظام ہے اس میں بھی تمام میں برکتیں پیدا فرما، اور تمام میں جو جو حصہ لینے والے ہیں سب کو تو اپنے شان شان بدلہ عطا فرما، اپنے یہاں یا اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما، علم حاصل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما لے، یا اللہ ہم یہاں جو آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور یا اللہ سیکھنے سکھانے کے لیے، تیرے رضا کے لیے، یا اللہ علم حاصل کرنے والوں میں اور تیرے رضا کے طلبگاروں میں ہم سب کو شامل فرما لے، الہ العالمین یا اللہ دنیا بھر میں امن اور سکون کو عام فرما دے، یا اللہ دنیا بھر میں امن اور سکون کو عام فرما دے، الہ العالمین یا اللہ جہاں جہاں تیرے بندے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، الہ العالمین یا اللہ ہمارے جو بھی مشائخ اب باقی ہیں الہ العالمین ایک ایک کر کے یا اللہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، صلحاء اٹھتے جا رہے ہیں، الہ العالمین جو جو مشائخ باقی ہیں یا اللہ جو تیرے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں یا اللہ صحت قوت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ اور امت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یا اللہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے یا اللہ وہ بہترین زمانہ تھا کہ یا اللہ وہ بہترین زمانہ تھا جس میں تیرے نیک بندے تیرے صلی اللہ کیسے کیسے اولیاء موجود تھے، اے شیخ رحمت اللہ علیہ کی برکتیں، یا اللہ ان کی صحبتیں، یا اللہ ان کی مجلسیں، یا اللہ ان کے خدمت میں حاضر ہونے والوں کے یا اللہ کی برکتیں، یا اللہ اور کیسے کیسے مشائخ دنیا میں موجود تھے، یا اللہ ایک ایک کر کے یا اللہ سب اٹھتے گئے، سب یا اللہ دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، الہ العالمین یا اللہ اب جو موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں یا اللہ صحت قوت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما کر یا اللہ امت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری ناقدری معاف فرما دے، الہ العالمین جو ہے تو نے جو نعمتیں عطا کی ہیں یا اللہ جو دینی لحاظ سے اسباب مہیا فرمائے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یا اللہ اب تک کی زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے جو غفلتیں کی یا اللہ تمام کو معاف فرما دے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، والہ العالمین یا اللہ پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ پوری امت کے یا اللہ جو بھی دنیا بھر میں جہاں بھی جو بھی جس قسم کی پریشانی میں ہے تمام کی پریشانیاں دور فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، خاص طور سے یا اللہ حضرت کو والدہ کو یا اللہ ان کے یا اللہ جن کے ذریعے سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ سیکھا اور جو کچھ حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں ان کے واسطے سے، الہ العالمین یا اللہ تو ان کو اپنی شان شان بدلہ عطا فرما کر، یا اللہ اپنے یہاں یا اللہ ان کو عافیت اور قوت و صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ ان کے جس طرح حقوق جو ہمارے ذمے ہیں ان کو یا اللہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اور دنیا بھر میں یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرے نیک بندے موجود ہیں یا اللہ، یا اللہ امت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مظلوموں کی اعانت فرما، ہم میں سے جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں یا اللہ جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ نااتفاقیاں ختم فرما دے، آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں یا اللہ ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے. دلوں میں آپس میں یا اللہ، گھروں میں آپس میں جوڑ، آپس میں یا اللہ پڑوسیوں میں آپس میں جوڑ، محلے والوں میں یا اللہ دین کا کام کرنے والوں میں، مسلمانوں میں آپس میں یا اللہ جوڑ پیدا فرما، مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام دینی کام کرنے والوں کو آپس میں جڑ کر مل جل کر کام کرنے کی اور یا اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تو تیرے محتاج بندے ہیں یا اللہ، ہماری حاجتیں تو ختم ہونے والی نہیں. الہ العالمین یا اللہ، یا اللہ تو ہمارے لیے جو بہتر سمجھتا ہے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں جو خیر ہے یا اللہ وہ خیر ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے ضرورتیں ہیں اور ہم نے نہیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو تو ہمارے حق میں خیر سمجھتا ہے وہ بھی عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اور ہمارے حق میں وہ بہتر ہیں وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.